मेरे प्रिय मित्रों नमस्कार। आज 27 मार्च 2018 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और मित्रों हार्दिक रूप से स्वागत करने के साथ साथ मैं विशेष रूप से भी स्वागत करता हूं। और ये जो विशेष शब्द का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं इसका उद्देश्य आप समझ गए होंगे, वो इसलिए कि इससे पहले जो आप डेली ऑडियो लेक्चर सुन रहे थे, जैसा कि आपको मालूम है कि इस बीच में यहां 15 दिन की क्लासेस चल रही थी तो मैं अपना पूरा समय स्टूडेंट्स के साथ बिता रहा था और ये मेरा सौभाग्य था कि 15 दिन मैंने बड़े खूबसूरती के साथ बिताए। लेकिन आप लोगों से कहीं ना कहीं अलग होने का भी एक मन में मलाल तो था ही, दुख तो होता ही था, फिर भी उसकी क्षतिपूर्ति मैंने प्री रिकॉर्डेड डेली ऑडियो लेक्चर के माध्यम से करने की कोशिश की थी। और अभी तक जो आप इसके तहत जो कुछ भी सुन रहे थे वो सारे के सारे प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स थे। और अब आज से आप जो कुछ भी सुनेंगे वे सारे के सारे बिल्कुल करेंट अफेयर्स पर बेस्ड होंगे, यानी कि हम अपने पुराने दौर में एक बार फिर से वापस आ चुके हैं। तो और मित्रों मैं आप सबके प्रति बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा, आप सबको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि मेरे प्रिय रिकॉर्डेड लेक्चर्स को भी आपका उतना ही प्यार मिला है जितना कि ताजा तरीन रिकॉर्डेड लेक्चर्स को मिलता है। तो मित्रों एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। और आप सबके साथ ही अब मैं स्वागत करता हूं अपने उन 46 नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 21 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच होने वाले क्लासेस के लिए रजिस्ट्रेशन कराए हैं। मित्रों लिस्ट थोड़ी सी लंबी है और मुझे खुशी है कि मुझे एक लंबी लिस्ट पढ़ने का मौका मिल रहा है, क्योंकि ये लंबी सूची भी कहीं ना कहीं आपका एकेडमी के प्रति विश्वास और साथ ही साथ प्यार को व्यक्त करता है। तो थोड़ा सा मैं आप सबसे समय की मांग करता हूं। तो मित्रों उन दोस्तों के नाम हैं कल्पना शर्मा, आप हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से हैं, पुष्पक कुमार मधुबनी बिहार से, शंभु शर्मा मझौलिया बिहार से, मंजुनाथ हिरेमत सवादत्ती कर्नाटक से, अंकिता सिंह इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से, मनु कुमार गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से, ब्रजेश शर्मा जबलपुर मध्य प्रदेश से, अशोक कुमार मीणा जयपुर राजस्थान से, अरुण देवांगन कवर्धा छत्तीसगढ़ से, भारत भूषण हापुड़ उत्तर प्रदेश से, लक्ष्मण कुमार बागरा राजस्थान से, कपिल वैष्णव पाली राजस्थान से, राहुल कुमार लोदीपुर बिहार से, गजानंद बीकानेर राजस्थान से, कौशिक दास मिदनापुर पश्चिम बंगाल से, विवेक प्रताप सिसोदिया आरा बिहार से, उपेंद्र कुमार यादव गिरिडीह झारखंड से, श्वेता कुमारी सीतामढ़ी बिहार से, मुकेश कुमावत जयपुर राजस्थान से, उत्कर्ष शुक्ला कानपुर नगर उत्तर प्रदेश से, प्रिंस कुमार श्रीवास्तव आरा बिहार से, रितेश कुमार झा पूर्णिया बिहार से, सौरभ सिंह बुंदेला भोपाल मध्य प्रदेश से, आशुतोष कुमार मुजफ्फरपुर बिहार से, अनिल कुमार साह पश्चिम चंपारण बिहार से, राम कुमार झोरण श्रीगंगानगर राजस्थान से, सनी मेहरोलिया ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश से, रूपम कुमार कुदरा बिहार से, मुदित अग्रवाल इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से, राखी दिल्ली से, जयसिंह कौशाम्बी उत्तर प्रदेश से, सुरेंद्र सिंह माझी रायगढ़ा उड़ीसा से, गणपति गोमांगो रायगढ़ा उड़ीसा से, प्रियांशु राय गया बिहार से, कौशलेंद्र सिंह फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से, शीतल यादव महोबा उत्तर प्रदेश से, प्रिंसी श्यामली उत्तर प्रदेश से, आकांक्षा कनौजिया झांसी उत्तर प्रदेश से, राहुल फैजाबाद उत्तर प्रदेश से, रजनीश पांडे रसरा उत्तर प्रदेश से, अंकित शुक्ला दिल्ली से, शेष नारायण चौरसिया प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से, पंकज कुमार बजाज ग्वालियर मध्य प्रदेश से, अरशद जमाल मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से, ज्योति सिंह सतना मध्य प्रदेश से और शुभम सोनी रीवा मध्य प्रदेश से। तो कल्पना पुष्पक शंभु मंजुनाथ अंकिता मनु ब्रजेश अशोक अरुण भारत, लक्ष्मण, कपिल, राहुल, गजानंद, कौशिक, विवेक, उपेंद्र, श्वेता, मुकेश, उत्कर्ष, प्रिंस, रितेश, सौरभ, आशुतोष, अनिल, रामकुमार, सनी, रूपम, मुदित, राखी, जयसिंह, सुंदर, गणपति, प्रियांशु, कौशलेंद्र, शीतल, प्रिंसी, आकांक्षा, राहुल, रजनीश, अंकित, शेष नारायण, पंकज, अरशद, ज्योति और शुभम, आप सभी 46 साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, आइए अब हम थोड़े से अपने विषय पर आते हैं। मुख्य विषय के तहत मैं आपसे ट्रेड वार के बारे में थोड़ी सी बातें करूंगा। ट्रेड वार, जितना भी वक्त मिल पाएगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इससे पहले जो कल की न्यूज है उस न्यूज को थोड़ा सा देख लेते हैं। कुछ ऐसी खबरें हैं जिनके बारे में मुझे लगता है कि स्टूडेंट को जानना चाहिए। हालांकि ये खबरें बहुत ही बेसिक स्तर की हैं, फिर भी मैंने महसूस किया है कि स्टूडेंट को बेसिक्स को भी समझने में कभी कभी दिक्कत होती है, या कह लीजिए कि उतनी स्पष्टता नहीं होती है। तो मैं न्यूज को आधार बना करके कुछ बेसिक बातें पहले आपसे करने जा रहा हूं। मित्रों, एक खबर आपने सुनी रेडियो न्यूज पर कि भारत ने यह कहा है कि उसका चीन के साथ जो व्यापार का घाटा है वो बढ़ता जा रहा है, और उसने चीन से ये बात कही है कि वो इस घाटे को कम करने के लिए वो अपने यहां के बाजार उपलब्ध कराए। देखिए, इसका मतलब क्या हुआ। देखिए, जब हम अर्थशास्त्र की बात करते हैं ना, तो हमें लगता है कि ये कोई किताबी बात है। नो डाउट कि शास्त्र जहां लग गया वहां किताब तो आ ही जाती है, शास्त्र का मतलब ही होता है बहुत ही व्यवस्थित अध्ययन। लेकिन जहां तक अर्थशास्त्र का सवाल है ना, वो सच पूछे तो हमारे जो दैनिक जीवन में घटनाएं घटती रहती हैं, आर्थिक घटनाएं, उनसे कोई बहुत अलग नहीं होता है। जैसे यहां हुआ कि चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा। अब देखिए, व्यापार में क्या होता है, एक देश से आप कुछ चीजें खरीदते हैं और बदले में दूसरे देश को कुछ चीजें भेजते हैं, आयात और निर्यात हम इसे ही कहते हैं। तो सीधी सी बात है कि मान लीजिए कि हम 1000 रुपए की चीज चीन को भेज रहे हैं और बदले में हम चीन से 2000 रुपए की चीज मंगवा रहे हैं। हमने 1000 रुपए की चीज भेजी और 2000 रुपए की चीज हमने उससे मंगवाई, तो अब हमारे 1000 रुपए हमें उसे देने पड़ेंगे। तो ये हम कैश में देंगे, वो देना तो पड़ेगा हमें, तो हम उसे नगदी के रूप में देंगे, फिर उनके चाहे वहां की अपनी करेंसी के रूप में दें या डॉलर के रूप में दें, जिसमें भी दें। तो इस तरीके से यह हुआ व्यापार घाटा, यानी कि 1000 रुपए का व्यापार घाटा। देखिए, मैं बहुत छोटा आंकड़ा जानबूझ करके ले रहा हूं, मतलब 1000 का नहीं होता है, 1000 का व्यापार घाटा। अगर चीन से हम 2000 रुपए का सामान मंगवाते हैं और बदले में चीन भी हमसे 2000 रुपए का सामान मंगाता है, तो मतलब यह है कि व्यापार घाटा नहीं हो रहा है, बराबर बराबर ठीक चल रहा है, और यह बहुत ही आदर्श स्थिति होती है। लेकिन सच पूछे तो व्यवहार में ऐसा नहीं होता है। तो चूंकि चीन से हम ज्यादा सामान मंगा रहे हैं, आप देखिए कि भारत क्या, पूरी दुनिया का जो बाजार है वो चीनी सामान से पटा पड़ा है। तो ऐसी स्थिति में भारत के लिए बड़ा चिंता का कारण हो गया है, चीन हमारे यहां से इतना सामान नहीं मंगा रहा है जितना हम चीन का सामान अपने यहां मंगा रहे हैं। तो स्थिति यह हो रही है कि भारत को लग रहा है कि अगर ये व्यापार घाटा बहुत ज्यादा बढ़ता चला गया, तो फिर तो हमें अपनी विदेशी मुद्रा भंडार का उपयोग करना पड़ेगा, और सच पूछे तो इस स्थिति को आप ज्यादा दिन चला भी नहीं पाते हैं। तो भारत ने कहा कि भाई, आप हमारे लिए बाजार उपलब्ध कराइए, मतलब हमारे कहने का मतलब यह है कि आप हमारे यहां से भी वस्तुओं का आयात कीजिए। वस्तुओं का आयात का मतलब ही हुआ कि आप उसे अपने बाजार में बेचेंगे। अब देखते हैं चीन इस पर क्या कदम उठाता है। लेकिन चूंकि चीन में अपनी ही चीजों का प्रोडक्शन इतना सस्ता है, इतना ज्यादा है, वो अपना सामान बेचने के लिए वो दुनिया के बाजार ढूंढ रहा है। आप देख रहे हैं कि कैसे चीन छोटे छोटे देशों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, वन बेल्ट वन रोड के माध्यम से भी वो एक तरीके से बाजार तक ही पहुंचना चाहता है। तो ऐसे में हमारे इस मांग को वो कितने गंभीरता से लेगा, देखने की बात है। लेकिन ठीक है, हम ऐसा महसूस करते हैं तो हमें अपनी बात तो रखनी ही चाहिए। तो दोस्तों, ये उस खबर के बारे में थोड़ी सी एक बेसिक जानकारी थी। दोस्तों, इस बीच में आपने देखा कि डेटा लीक होने के को लेकर के बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही है और बातें भी होने लगी हैं कि जो भी हमारा डेटा होता है, चाहे वो YouTube पर हो, WhatsApp पर हो या और भी दूसरे जगह पर स्टोर्ड हो, किस तरह से वो दूसरी कंपनियों को दिया जा रहा है, उसका किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि उसकी जो प्राइवेसी है वो भंग हो रही है और इसको लेकर के एक जबरदस्त बहस पूरी दुनिया में छिड़ गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज इस पर आप अपनी निगाह थोड़ी सी रखें। जहां भी आपको इस पर कुछ भी अच्छी चीजें जानने को मौका मिलता है, चाहे वो घटना के रूप में हो, चाहे वो एक्ट के रूप में हो, एक्शन के रूप में हो, सजेशन के रूप में हो, तो प्लीज आप उन्हें नोट करते चलें। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके लिए आपको अपनी रजिस्टर का एक पेज सुरक्षित रख लेना चाहिए। इसके साथ ही भारत ने जो एक बात कही है दोस्तों, ये बहुत अच्छी बात है, और वो है कि भारत सरकार ने कहा है कि हमारा जो घाटा है, यानी कि अब हम अपने देश के घाटे की बात कर रहे हैं, अब हम व्यापार घाटे की बात नहीं कर रहे हैं, अपने घाटे की बात कर रहे हैं। देश भी तो एक तरफ कमाई करता है, दूसरी तरफ उस कमाई का इस्तेमाल करता है, चाहे वो अपने एस्टेब्लिशमेंट खर्च के रूप में करे, यानी कि वेतन वगैरह देने के रूप में खर्च करता है, सेना के रूप में खर्च करता है, फिर वो कुछ इन्वेस्टमेंट भी करता है, जो भी वो खर्च करता है कह लीजिए टोटल मिलाकर के, सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों में वो पैसा लगाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करता है, तो उन्होंने कहा कि उसको पूरा करने के लिए हमें ओवरड्राफ्ट लेने की जरूरत नहीं है। ओवरड्राफ्ट आपको मालूम है कि वो बैंक से लिया जाता है, है ना, जैसे मान लीजिए कि बैंक से ये एक व्यापारी के वो कह लीजिए समझौता होता है, जैसे बैंक मान लीजिए कि एक बहुत बड़ी कंपनी है, वो रेपुटेड कंपनी है, तो उस कंपनी को उन्होंने बैंक वालों ने कह रखा है भाई कि आप 500 करोड़ रुपए कभी भी हमसे ले सकते हैं, है ना, तो उससे भी अधिक वो ले या उतना ले ले, तो ये इसको ओवरड्राफ्ट कहते हैं कि मतलब आपका पैसा जमा नहीं है वहां, लेकिन आप उससे भी ज्यादा निकलवा सकते हैं, ये इसको सिंपल तरीके से इस रूप में आप समझ लीजिए ओवरड्राफ्ट। तो भारत ने कहा है कि नहीं, हमको उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारा जो भी घाटा हो रहा है उसको हम अपने लेवल पर पूरा कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों, जो एक छोटी सी खबर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसका आपको मैं समझता हूं कि कहीं भी इस्तेमाल कर लेना चाहिए जहां भी आपको उपयुक्त समय मिले, वो ये है कि जैविक खेती के लिए सिक्किम से कहा गया है कि वो देश का मार्गदर्शन करे, यानी कि सिक्किम में ऑर्गेनिक खेती होने लगी है और एक बहुत बड़ी बात है, और सिक्किम आप देखेंगे कई मामलों में आगे हो रहा है, वहां फ्लोरिकल्चर बहुत डेवलप हो रहा है, स्वच्छता अभियान में वो बहुत आगे निकल गया है सिक्किम, मतलब पूरी तरह से हो गया है, तो अब वो ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में भी उसे देश का मार्गदर्शन करने की कोशिश की जा रही है, कहा जा रहा है कि वो देश का मार्गदर्शन करे, तो इस रूप में आपको ये तथ्य मालूम होना चाहिए। फ्रेंड्स, अब मैं आता हूं ट्रेड वार के ऊपर, अभी जो ट्रेड वार की चर्चा हो रही है, और जब हम ट्रेड वार की देखिए बात कर रहे हैं, यह हमारा आज का मुख्य विषय है, तो यह फिलहाल वर्तमान में अमेरिका और चीन के बीच के ट्रेड वार की बात हो रही है। दो शब्द हैं, व्यापार युद्ध, व्यापारिक युद्ध। अभी व्यापारिक युद्ध क्या है, ठीक है, सामान्य युद्ध तो आप सब जानते हैं, व्यापारिक युद्ध का मतलब है कि अब इसमें कोई हथियार नहीं है, कोई हथियार नहीं है, ये कह लीजिए कि अब हथियारों की जगह टैक्सेस हैं, टैक्स लगा करके आप दूसरे जगह, दूसरे देश के सामान को अपने यहां आने से रोकेंगे, तो निशाना कौन बन रहा है, अब वस्तु, सामान, सामान भी याद रखें विदेशी सामान, यानी कि आप विदेशी सामान को निशाना बनाना चाह रहे हैं, अपने देश में आने से रोक रहे हैं, और उसके लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं टैक्स का, जिसे संरक्षणवाद भी कहा जाता है, यानी कि विदेश से जो सामान आ रहा है उस पर आप टैक्सेस ज्यादा लगा दीजिए, जब आप ज्यादा टैक्स लगा देंगे तो जब वो सामान आपके देश में आएगा तो टैक्स लगने के बाद वह सामान महंगा हो जाएगा, और महंगा हो जाएगा तो बट नेचुरली कि आप वहां के जो नागरिक हैं उसे नहीं खरीदेंगे, फिर वो क्या करेंगे कि वही सामान उनके देश में भी बन रहा है, पहले जब उस पर टैक्स नहीं लगाया गया था विदेशी सामान पर, तो जो विदेशी सामान था वो सस्ता पड़ता था, तो जो नागरिक थे वो विदेशी सामान खरीदते थे, लेकिन अब चूंकि विदेशी सामान पर टैक्स बढ़ा दिया गया है, लगा दिया गया है, तो अब देश का ही बना हुआ सामान सस्ता हो गया है, तो लोग अपने देश का बना हुआ सामान खरीदने लगेंगे, इससे फिर उनके देश के जो उद्योग हैं वो पुनर्जीवित होंगे, आगे बढ़ेंगे, और देखिए जब उद्योग आगे बढ़ते हैं तो बट नेचुरल है कि फिर वहां के लोगों को रोजगार भी मिलता है। मैं समझता हूं कि अभी जो हमारे ताजा अभी जो स्टूडेंट गए हैं वो इसे बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे, क्योंकि इकोनॉमिक्स में हम लोगों ने इसके बारे में बहुत अच्छे से और विस्तार के साथ बातें की हैं। फ्रेंड्स, इस बीच में चूंकि मैं आपसे बिल्कुल जीवंत रूप में बात नहीं कर रहा था, तो आपने एक और भी खबर पढ़ी होगी कि अमेरिका अब एल्यूमिनियम और इस्पात स्टील उसके देश में जो आयात हो रहा है उस पर उसने टैक्स लगाया है 25% और 10%। ये उसने स्टील और एल्यूमिनियम पर टैक्स लगाया। इसके बाद ये शुरू हुआ, ये जो ट्रेड वार जिसे हम अब कह रहे हैं उसके बाद तेजी से शुरू हो गया। अब अमेरिका ने सच पूछे तो एक लंबी लिस्ट बना रखी है, जबरदस्त रूप से लगभग 1000 सामान की उसकी लिस्ट है जिस पर वो टैक्स लगाने जा रहा है, जो विदेश से सामान आ रहा है। और इस बीच में उसके जवाब में चीन ने भी एक लिस्ट तैयार कर ली और उसने भी कुछ सामान पर टैक्स लगाना शुरू कर दिया जो अमेरिका से उनके यहां आ रहा है। अब आप देखें कि इसे ही हम कह रहे हैं ट्रेड वार। अमेरिका का यह कहना है कि भैया हमारा जो व्यापार घाटा है जिसे हम कहते हैं ट्रेड डेफिसिट, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, यानी कि अमेरिका का सामान चीन में कम जा रहा है और चीन का सामान अमेरिका में खूब जा रहा है, तो अमेरिका का जो ट्रेड बैलेंस है वो अपोजिट हो गया है, मतलब चीन के फेवर में हो गया है। यह माना जाता है कि यह अंतर लगभग 450 अरब डॉलर का है। अब उसको ठीक करने के लिए जो अमेरिका है वो टैक्स की मदद ले रहा है, टैक्स बढ़ा बढ़ा करके वो चीन के सामान को अपने यहां आने से रोक रहा है, चीन भी अमेरिका के सामान को आने से रोकेगा। और बट नेचुरली कि जब ये देश ऐसा करेंगे तो दूसरे देश भी ऐसा करेंगे, तो इससे ये अब आशंका पैदा हो गई है कि पूरी की पूरी दुनिया में कहीं ऐसा ना हो कि एक ट्रेड वार छिड़ जाए, और अगर इस तरह से छिड़ गया तो फिर इस लिबरलाइजेशन का क्या होगा, इस ग्लोबलाइजेशन का क्या होगा। जो लिबरलाइजेशन आया था वो आया ही इसीलिए था कि दुनिया के मार्केट एक हो जाएं, वस्तुओं का जो आयात निर्यात है वो अबाध गति से होता रहे, दुनिया के मार्केट जुड़ जाएं। जब आप इस तरह से टैक्सेस लगाएंगे तो फिर क्या होगा, पहले भी तो आखिर में यही हो रहा था। अमेरिका ने एक और आरोप चीन पर लगाया है, ये आपको मालूम होना चाहिए। अमेरिका ने लगाया है कि जो चीन है वह जो खासकर जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जिसे हम बौद्धिक संपदा कहते हैं, उसका आरोप लगाया है चीन पर कि यह चुराता है, बौद्धिक संपदा को चुराने का आरोप चीन पर लगाया है कि इसकी वजह से चीन जो है अपने उत्पादों में इतना आगे बढ़ता चला गया है। तो उसके जवाब में आप कह लीजिए यूं कि थोड़ा सा यह ट्रेड वार की शुरुआत हुई है दोस्तों, लेकिन यह बहुत ही खतरनाक स्थिति है और इसको लेकर के विश्व व्यापार संगठन भी चिंतित है। आपको मालूम है कि कुछ समय पहले अभी 19-20 मार्च को शायद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का दिल्ली में एक छोटा सा सम्मेलन हुआ था, मंत्री स्तर का सम्मेलन हुआ था, और उसमें यही बात कही गई कि भैया ये जो पाबंदियां लगानी शुरू हुई हैं इनके बारे में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से कहा जाए कि भैया इसको बंद कराओ, तो यह फैसला उसमें सामान्य तरीके से लिया गया है। तो मित्रों, यह ट्रेड वार के बारे में एक थोड़ी सी जानकारी थी, लेकिन यह भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे भी महत्वपूर्ण मान करके आप इसके लिए भी एक पेज सुरक्षित कर लें, और जब भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें इस संबंध में मिलती हैं आप उन्हें नोट करते जाएं। तो दोस्तों, अब मैं आता हूं बिल्कुल अंतिम चरण पर, दो चरण बचते हैं एक न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स का, तो वो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, वो सब आप अपने अपने ढंग से देख लेंगे। जहां तक ईमेल का सवाल है, सभी ईमेल लिखने वाले दोस्तों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं, और उन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं। रजनी शुक्ला इलाहाबाद से, हेतराम प्रजापत जयपुर राजस्थान से, तनु कुमारी रांची झारखंड से, शिवांगी गहरवार एकनाथ, रोशनी जाट देवास मध्य प्रदेश से, शैलेंद्र शर्मा वृंदावन उत्तर प्रदेश से, विजय लक्ष्मी देवांगन और विंधेश्वरी प्रसाद त्रिपाठी, आप सबका भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।